कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के हम जो कलश है उस कलश पर जो स्वामी जी के प्रवचन चालू हो गए हैं उसको हम देख रहे हैं। ये पहला अभी जो कलश हमने बोला था उस मंगलाचरण में भी इसका हमने ये गाथा हमने पढ़ी थी। ये तो कलश है, गाथा थोड़ी है, कलश पढ़ा था। अब ये पृष्ठ क्रमांक 9 पर हम आए हैं और दूसरे पैराग्राफ से पढ़ेंगे। परने जानता एमा संसारी जीव ने जानता एम केता सिद्ध ने जानता एम पन गौनपने आवी जाय छे। निश्चय थी जीव पोताने जाने त्यारे तेने सिद्ध ने जाण्या एम व्यवहारे केवाय छे। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं ये बात अब हम आगे और अच्छी तरह से समझेंगे। क्योंकि जब कुंदकुंद आचार्य की पहली गाथा शुरू होगी तो उसमें ये बात विशेष रूप से बताई जाएगी। क्या कह रहे हैं, परने जानता यानी पर में किसको लेना, स्व छोड़कर सबको, तो सबको में सिद्ध आ गए ना, इसलिए कह रहे परने जानता एमा संसारी जीव ने जानता एम केता सिद्ध ने जानता एम पन गौन पने आवी जाय छे, ऐसा बताया। अब और क्या बात बताते, निश्चय थी जीव पोता ने जाने त्यारे तेने सिद्ध ने जाण्या एम व्यवहारे कहवाय छे। क्योंकि देखो अपने स्वभाव का अनुभव जिस जीव को होगा तो उसका जो स्वभाव है वह उसने पर्याय में जान लिया। और सिर्फ हम स्वभाव स्वभाव की अपेक्षा से प्रत्येक जीव को देखते हैं तो वह प्रत्येक जीव सिद्ध की पर्याय समान ही स्वभाव से है। सिद्ध का पर जो जीव है उसका जो द्रव्य का स्वभाव है वैसे अन्य जीवों का स्वभाव भी तद्रूप ही है, लेकिन सिद्ध की जो पर्याय व्यक्त रूप से है उन पर्यायों में भी जो शुद्धता आई हुई है वैसी शुद्धता प्रत्येक जीव के द्रव्य में है। तो यहाँ कहते जब स्व को जानेगा तो सिद्ध को भी जाना, सिद्ध तो पर्याय है ना, तो सिद्ध के द्रव्य को जाना की बात नहीं, सिद्ध की पर्याय को जाना, सिद्धत्व को जाना, यह भी बात उसमें आ जाती। व्यवहार ऐसा भी कहवाई छे, शब्दो हो तेनो न्याय लेवो जोइए ने, यानी क्या जो शब्द बताने में आ रहा है इन्हों न्याय ने यहाँ लेना, उसका अभिप्राय जो है जिस अपेक्षा से वो कथन कर रहे हैं वो भी तो ध्यान में आना चाहिए ना, ऐसा समझा रहे। अब आगे सिद्ध ने ज्ञान छे, सुख छे, पन सिद्ध समान स्वरूप पोतानू छे तेने जानता पोताने ज्ञान ने सुख थाय। झीणी बात छे भाई, ये सारा न्याय से और लॉजिक से ही हम समझ सकते हैं। क्या कहा के सिद्ध पण आ आत्मानी अपेक्षाए परवस्तु छे। आहा, परवस्तु ने जानता ज्ञान ने सुख केम हुई शके। लेकिन फिर क्या समझाते हैं, अंतरात्मा शुद्ध वस्तु छे तेने जानता साचू ज्ञान ने साचू सुख थाए। दो बातें बताए, जब जब यह जीव पर को जानेगा तब उसको ना सही ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान नहीं होगा और सम्यक सुख यानी सुख भी अतीन्द्रिय सुख की भी प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा जब कहते तो सिद्ध को जानने से कैसा पॉसिबल होगा, तो कहते सिद्ध को जानते हैं ये इसका अर्थ यह है कि सिद्ध समान जो अपना स्व का स्वरूप है उसको जानने से। क्या कहा देखो, पर वस्तु ने जानता ज्ञान ने सुख केम होई शके। अंतरात्मा शुद्ध वस्तु छे तेने जानता साचू ज्ञान ने साचू सुख थाय। वो साचू सुख कैसा है कि जो सिद्ध जैसा है अपना स्वरूप उसको जाने तो की बात है। आम वाच छे जे त्रिकाल शुद्ध जीव छे तेने जानता पर्याय मा ज्ञान ने सुख थाय आनंद नो अनुभव थाय। निमित्त ने जानता काई नहीं पर ने जानता साचू ज्ञान ने साचू सुख थाय नहीं। ये बात समझ में आई। कविता आप कुछ समझती इसमें थोड़ा बहुत, क्या बता रहे? देखो ये मूल नियम ऐसा है, अब हम मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बात करेंगे। जब जब कोई जीव पर को जानता है तो पर को जानेगा तो उसमें उसको कभी भी सुख होगा नहीं, तो क्या होगा? दुख होगा। अब मान लीजिए कि दो व्यक्ति बैठी हैं, एक बहुत हेफ्टी और एकदम ऐसे स्टाउट है और दूसरी एकदम ऐसी दुबली दुबली है, तो जो दुबली है वो जब स्टाउट व्यक्ति की तरफ देखेगा तब वो क्या सोचेगा, देखो मैं कितना अच्छा हूँ और ये देखो ये कैसा है, तो उसमें राग द्वेष के परिणाम चालू हुए, उसको गर्व आ गया, मान आ गया। तो मान ये क्या किसका द्योतक है नलिन भाई? द्वेष का। हाँ, मान जो है वो द्वेष का द्योतक है, राग यानी क्रोध जो है, क्रोध मान ये द्वेष के द्योतक है और माया और लोभ और राग का परिणाम है। हाँ, और जो दुबला है वो अपने को हीन दीन मानेगा, ये देखो ये कैसा है, मैं देखो कैसा हूं। तो पर को देखते देखते राग द्वेष के परिणाम होंगे, वैसे ही पर को और पर्याय को जब यह जीव नजर करेगा, पर्याय पर ही ध्यान देगा, तो उसमें उसके राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हुए रहेंगे नहीं। ये मूल सिद्धांत ध्यान में रखते हुए तो इसका अर्थ है तभी उसको सुख चाहिए तो क्या करना, कि वो मोटा है मैं दुबला हूँ, वो ऊंचा है मैं ठिंगणा हूँ, वो गोरा है मैं काला हूँ, तो हम किस में ध्यान दे रहे? पर के तरफ ध्यान रहे, लेकिन हम दोनों ही आत्मा है। दोनों की तो बात छोड़ो, मैं स्वयं आत्मा हूँ और मैं ज्ञान दर्शन में हूँ, ऐसे अपने सच्चे स्वभाव पर इस जीव की जब दृष्टि जाएगी तो बाह्य में जो खोखा है वो चाहे जैसा होवे वह उस स्वरूप मैं नहीं हूँ, ऐसा जब वह जानेगा तो उसके दुख होने का प्रसंग ही नहीं आएगा। स्वामी जी ऐसा कहते थे, एक थैली के अंदर काली जिरायती है और ऊपर साकर लिखा है, तो बाहर कुछ भी लिखे तो काली जिरायती बाहर साकर लिखने से वो थोड़ी काली जिरायती हो जाएगी। काली जिरायती जानती है ना, एक कड़वी चीज है, मान लो जाने दो, काला होता है जीरा, वो कड़वा होता है। अब क्या कहे, बाहर में भले कैसा भी होवे लेकिन अंतरंग में जो है वह तो आत्मा ही है ना, ख्याल में? उस आत्मा को नजर न करते हुए ये मनुष्य है, ये तीरंज है, ये नारकी है, ये देव है, ख्याल में है। तो जो पर्याय में है उस रूप वो थोड़ी है। तो ऐसा कहते हैं कि पर के तरफ देखने से इस जीव को राग द्वेष के परिणाम हुए बिना रहेंगे नहीं। अब ऐसा है तो सिद्ध को देखते हुए फिर इसको कैसा सुख होगा, ऐसा प्रश्न है। अरे सिद्ध को देखते हुए सिद्ध स्वरूप मैं भी हूं ऐसा करके वहां से हटकर अपने स्वरूप में जब इसकी इसका उपयोग केंद्रित हो जाएगा तब उसके ज्ञान की और सुख की प्राप्ति शुरू हुए बिना रहेगी नहीं। देखो अभी क्या कहते हैं अगला पैराग्राफ। पोता ने जानता ज्ञान थाय अरहंत ने जाने माटे साचू ज्ञान थई जाय छे एम नथी। तो ये सब प्रवचन सार 80 गाथा में तो लिखा है कि जो अरहंत के द्रव्य को गुण को और पर्याय को जानता है उसका मोह नष्ट हो जाता। अरे भाई पर सुन तो सही, वह उनको देखकर उस रूप में हूं, हमारे दोनों के द्रव्य में कोई अंतर नहीं है, गुणों में भी कोई अंतर नहीं है, ऐसा जानकर अपने द्रव्य पर जो नजर रखेगा, द्रव्य पर जो लक्ष्य केंद्रित करेगा तो उसके स्व का अनुभव होगा तो उसका मोह नष्ट होगा, ख्याल में आया। तो वो बात यहां कह रहे हैं कि अरहंत ने जाने माटे साचू ज्ञान थई जाए एम नथी। जे खरेखर अरहंत ने द्रव्य गुण पर्यायपणे जाने छे, वही बात आई है। ये किसकी बात है, प्रवचनसार गाथा 80 में लिखा है। देखो जे खरेखर अरहंत ने द्रव्य गुण अने पर्यायपणे जाने छे ते खरेखर पोताना आत्मा ने जाने छे एवू जे प्रवचनसार गाथा 80 में लीधू छे एनो आशय एवो छे के प्रथम अरिहंतना द्रव्य गुण पर्याय ने जाने एटले मन थी कड़े एटले विकल्प पूर्वक जाने, पछी एनु लक्ष्य छोड़ी पोताना द्रव्य गुण पर्याय ने भेद थी जाने, पछी एवा भेद ने समावी दे एटले द्रव्य गुण पर्याय ना भेद नु लक्ष्य छोड़ी अंतर मां स्थित थाय एटले अभेद, ऐसे आपने आत्मा का ही लक्ष्य करे और उसी में स्थिरता प्राप्त करे तो कहते उसको सुख और ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये इतना सारा लंबा लिया, ख्याल में आई बात। हाँ त्यारे तेने अतीन्द्रिय सुख प्रकटे छे अने त्यारे पोताना आत्मा ने जाणियो एम कहवाय छे। भाई यहां तो जो मुनिराज होते हैं वह तो उनको तो ऐसी ही सदा अंतरंग से ऐसा ही उनका प्रयत्न भी होता है और इच्छा भी होती है कि हम कहां ये छठे गुणस्थान में प्रमाद रूप दशा में आ पड़े। उनको तो अपने स्वरूप में एकाग्र होने की ऐसी अटपटी इच्छा होती है और उसके उनके बहुत सारे प्रयत्न भी ऐसे होते हैं कि यह छठे गुणस्थान में न रहते हुए सातवें में ही हम रहे, तो उनको कहां फुर्सत है कि हम किस अपेक्षा से किस नए से बोल रहे हैं। वो तो उनके मन में जो आ जाए वो लिख दे दे, वो जो अपेक्षा है या जो नए है वो तो कथनचित किस अपेक्षा से बात की है वो तो हमें समझना है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में लीनता करने के लिए विषय झटपटते होंगे क्या। नहीं नहीं मेरे को 10 आदमी को समझाने का, फिर बाद में मैं अंतरंग में जाऊंगा देखूंगा बाद में फुर्सत ने, ऐसा थोड़ी होगा। हम दूसरों की बात छोड़ दो, अपनी छोटपन की बात याद करो, जब हम मैट्रिक में होंगे और या तो कोई और आगे की परीक्षा और हम स्वयं अभ्यास करते हैं और कोई आपने को आके पूछता है भाई ये इसका जरा उत्तर बता दो, तो उसको तो अपन फटाफट बता देंगे, कहीं समझाणो नहीं तो पहला ने पूछ ले अभी मैंने जरा वाचवा देने, ऐसा करके हम अपने अपना परीक्षा का अभ्यास करते हैं। ऐसा मुनिराज को नहीं होता होगा, लेकिन क्या करें अंतर में स्थिरता नहीं रहती है तब सहज रूप से उनका वहां से लक्ष्य हट जाता है। तो यहां आए छठे में प्रमत्त गुण स्थान में आए तो उनको तो ऐसा ही लगता है कि अशुभ वंचनार्थ ऐसे विकल्प आते हैं अशुभ से बचने के लिए, और तब वो जो लिख देते हैं कहो या उपदेश देते हैं तब सारी बात इतनी डिटेल में समझाने के लिए उनको थोड़ी फुर्सत होती है, ख्याल में आई बात। तो वो कहते हैं कि समाविदे एटले द्रव्य गुण पर्याय ना भेद नु लक्ष्य छोड़ी अंतर्मा स्थित थाय त्यारे तेने अतीन्द्रिय सुख प्रकटे। ये सारी ये सारा जो प्रोसेस है इसके लिए उन्होंने ऐसा ही बताया कि जो अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाने वह अपने आत्मा को जानता है, बात खत्म। वो कैसा जानेगा, क्या जानेगा, इधर से लक्ष्य हटाओ, उधर पटाओ, ऐसा कटाओ, बैठा कुछ नहीं, ख्याल में आया? वो तो तुरंत इतना ही बता दिया, बाकी आप समझदार हो तो समझो, नहीं समझो तो तुम्हारा कल्याण तुम जानो, ख्याल में। अब कहते स्वना आश्रय थाय ते सम्यक ज्ञान छे, पर्याय परनी हो कि स्वनी हो। क्या कहा अभी हमने पहले एक दिया था ना, पर के तरफ और पर्याय के तरफ जब जब इस जीव का लक्ष्य जाता है तब क्या होता है हेतल? हाँ, राग द्वेष के परिणाम होते, यानी अंतरंग में स्थिरता रूप वितरागता नहीं होती है, सरागता उत्पन्न होती है। तो वही बात यहां कहते हैं, स्वना आश्रय थाय ते सम्यक ज्ञान छे। ये तो पहला एक सिद्धांत बताया कि जब सम्यक ज्ञान किसी को प्राप्त करना हो तो कितना ग्रंथ का अभ्यास होना चाहिए, कितने शास्त्र पढ़ने चाहिए, हा? तो उसको सम्यक ज्ञान होगा। तो कहते कोई मत कर। तो क्या करूं साहब? तो कहते स्वनो आश्रय ले, यानी अपना स्वभाव जैसा है, अपना स्वरूप जैसा है, उसका तू अवलंबन ले, उसका आश्रय ले, यानी उसी को जान। और यह जानना ही धर्म की प्राप्ति की शुरुआत है। उसी से सम्यक दर्शन कहो या मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहो, एक ही बात है। तो कहते स्वना आश्रय थाय ते सम्यक ज्ञान छे, पर्याय परनी हो के स्वनी हो। पर्याय नु लक्ष्य थता पण विकल्प उठे छे, अने स्वनो जे अनुभव छे ते निर्विकल्प अवस्था छे। आ तो कई थई विकल्पात्मक छे। अनंत गुणोनी पर्याय अंदर मा जारे द्रव्य तरफ ढळे छे त्यारे तेने ज्ञान अने सुख थाय छे। भाई सर्वज्ञ जिनेन्द्र देवनो मार्ग एटले शुद्ध जीवनो मार्ग कोई अलौकिक छे।
देखो क्या कहना चाहते हैं, अनंत गुणों ने पर्याय अंदर में जा रहे द्रव्य तरफ डरे। हमारी रुचि तो बाहर है और ज्ञान की पर्याय अंदर ढालना चाहते हैं ना, अंदर आत्मा में रमना चाहते हैं, और रुचि कहाँ पड़ी है? बाहर। रुचि यानी श्रद्धा गुण की पर्याय, यानी श्रद्धा गुण तो बाहर लगा हुआ है और ज्ञान को अंदर घुसेरना चाहता है, यानी वो ऐसा करो, ऐसा ध्यान करो, इधर देखो, उधर देखो, आत्मा को देखो, ऐसा आता ना। हमको फोन भी आते, हम त्राटक करते, क्या करते हैं तो आईने में देखते रहते, अपनी फिगर देखते रहते और एकदम आंख बंद करके हम आत्मा को देखते। अच्छा तो आपको क्या दिखा? तो हमें अच्छा प्रकाश दिखा। हमने पूछा प्रकाश क्या है? जो दिखता है वो क्या होता है? किसकी पर्याय? पुद्गल की पर्याय। प्रभावी तो सब जानते हैं। तो ये ऐसे ऐसे कुछ तो भ्रबंधी चलती है। तो अनंत गुणों, ये पूरी रुचि है, चारित्र है, ज्ञान है। हमें समझाने के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, यानी ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र तीन गुणों से बताए। परंतु सभी गुण जब अंदर ढलेंगे और वो हो जाता है एक साथ, जिसकी रुचि अंदर है तो उसका ज्ञान भी अंदर चला जाता है और सभी गुण अंदर अंतरोन्मुख हो जाते हैं। तो उसके लिखा है ना, अनंत गुणों ने पर्याय अंदर में जारे द्रव्य तरफ ढले छे त्यारे तेने ज्ञान अने सुख थाय छे। तो अभी हमको अनंत गुण गिनने पड़ेंगे। अरे हरेक की पर्याय अंदर गई कि नहीं गई कि नहीं?
वो मेंढपाल धनगर होता है ना, क्या बोलते आप लोग, वो जैसा एक 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 अपनी वो शेरड़ी अंदर, चलो चली कि नहीं, एक जगह आई कि नहीं, ऐसा देखने के लिए सब पर्याय गई कि नहीं, पर्याय गई कि नहीं देखेगा तो अपने आत्मा की तरफ देख रहा है।
वो अभी अभी बताया ना, पर्याय को नहीं देखना है। और अभी हम सभी पर्याय अंदर गए कि नहीं गए कि नहीं, उसकी चर्चा नहीं करनी, उसका लक्ष्य नहीं करना है।
एक ज्ञान जो है वह ज्ञान ही उसके तरफ ढलता है तो साथ में अन्य भी पर्याय हो जाती है। लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि अनंत पर्याय जाएगी तो ख्याल में आया, वो तो जाती है भाई, पर यहाँ मुख्य रूप से तो तीन पर्याय की बात होती है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र की। तो वो तीनों की जब जाती है तो बाकी अन्य भी अनंत उसके साथ होती ही है। अभी क्या कहते हैं, सर्वज्ञ जिनेश्वर देवनो मार्ग, तो वो क्या होता है साहब? वो मार्ग एटले शुद्ध जीवनो मार्ग, શુદ્ધ જીવનો માર્ગ એટલે શુદ્ધ જીવને પ્રાપ્ત કરવા વાળો માર્ગ કોઈ અલૌકિક છે. દેખો યહાં કોઈ ભી આપકો સિદ્ધાંત હાથ મેં આયે તો યહાં કહીં પર ભી એ નહીં બતાએંગે કે આપ ઇસ પર્ટિક્યુલર ભગવાન કો ઇસ વ્યક્તિ કો તુમ નમસ્કાર કરો. તુમ્હેં અગર કિસી મેં એકાગ્ર હોના હૈ તો અપને સ્વ સ્વભાવ મેં એકાગ્ર હો. યહી બાત એક ને હજારો બાર આયેગી, હર પૃષ્ઠ મેં દો દો તીન તીન બાર તો એ બાત દોહરાઈ જાયેગી. ख्याल में और इसका मूल क्या है तो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करे. ये बात मजबूत आई से अपने दिमाग में. मैं तो पहले पहले बहुत ऐसा कहता था क्या राजेश कि वो हमारा अजरुद्दीन था ना, अजरुद्दीन वो गले में एक तावीज पहनता था. वो जरा आउट होने को आया तो तावीज लेके ऐसा ऐसा कुछ करता था, या सिक्सर मारे या सेंचुरी करे तो उसका कोई वो तावीज का ये करता. वैसे हमारे गले में भी एक तावीज हमने दिया था सबको उस टाइम में. कई लोगों ने पहन के रखा है, कई इन्होंने छोड़ दिया है. तो तावीज कौन सा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, ये बात अपने गले में उतार के रखो. वो तावीज है, ऐसे बाहर से पहनने का नहीं हो, नहीं तो 5-5 रुपए में बेचते हो, ऐसा ना कुछ काम नहीं कर. तो हम कोई भी संकट में आ जाए, कोई भी गुस्से में आ जाए, कोई भी तकलीफ में आ जाए, तो उसमें पहले में पहले ये देखना कि क्या परद्रव्य मेरा कुछ कर सकता है या मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूं. नहीं तो तेरा क्या काम है फिर, कुछ नहीं कर सकता है तो. मैं तो जानन देखन स्वभाव ही हूं, जानना देखना यही मेरा स्वभाव है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. ये बात जितनी मजबूताई से और जितनी जल्दी हमारे अंतरंग में उतरेगी उतना समय सार दूर नहीं है. ये सारभूत जो शुद्ध आत्मा की बात जो हो रही है वह प्राप्त करने का यही एकमेव उपाय है. तो राजेश भाई हमको प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके दिमाग में आया है, मैं समझ सकता हूं. मन परे ज्ञान नहीं है मुझे कि आप तो इतने सालों से तो ये समयसार पढ़ रहे हो तो अभी तो कितने बार आपको हाथ में आया हो. भाई बात तो ऐसी है, आपका कहना बिल्कुल उचित है, लेकिन ऐसा है कि शिखर जी पे हजारों लोग चढ़ते हैं, कोई जल्दी ऊपर टॉर्च पे जाता है, कोई आस्ते आस्ते जाता है, लेकिन जाएगा तो वो ऊपर ही शिखर जी तक. किसी को जल्दी हाथ में आ जाए, किसी को बाद में. वैसा अपना जो यह मार्ग है, जिनेन्द्र देव का जो मार्ग बताया ना, जिनेन्द्र देव नो सर्वज्ञ, जिनेन्द्र देव नो मार्ग, मार्ग तो हमारे हाथ में आया है और उसकी मंजिल आज नहीं अगले भव में, क्यों ना अगले 10-5 भव में कहो या इसी भव में कहो, आने वाली तो जरूर है. अरे जो उस मार्ग से वंचित है, जिसको वो पता ही नहीं है, उसके तो हाथ में आना ही कभी पॉसिबल नहीं है. ख्याल में आए, ये तो मैं अपने राजेश भाई का नाम लेके बोलता हूं, मैं समझता हूं किसके किसके मन में क्या क्या आया है. ख्याल बात तो ऐसी है भाई, हमें जो बात यहां बतानी जा रही ना, अपना क्या नाम है वासंती बेन, जो सिद्धांत हमें बताए जा रहे हैं ना, उस सिद्धांत पे हमारा विकल्प चलना चाहिए, उस सिद्धांत के बारे में हम सोचना चाहिए. हम तो क्या करते हैं, ये सिद्धांत पढ़ते हैं और ये सामने वाला जो बोल रहा है ना तो उसमें कितना उतरा है, तो हम कहां देख रहे हैं, पर या पर्याय पर. तो हमें राग द्वेष हुए बिना रहेंगे कि वितरागता आएगी. ख्याल में यहां तो जो जिस दशा में बोल रहा हो उस दशा तरफ न देखते हुए जिनेन्द्र भगवान के मार्ग से कोई विरुद्ध बात बताता हो तो उसको सुनना मत. ख्याल में आया, अगर वो जिनेन्द्र भगवान की बात बताता है तो उसके तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए. ये मैं आपको पहले शुरू में जो जो अभी क्या है ये समय सार पढ़ते पढ़ते ऐसे एकदम शुद्ध आत्मा की बात चलती है तब हमें उसके तरफ ध्यान न देते हुए हमारा मन डाइवर्ट हो जाता है, अन्य अन्य बातों में लग जाता है. तो वहां से अपनी दृष्टि को समेट कर ये उपयोग अपना इसमें लगना चाहिए. इसके लिए मैं आपको किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम लेके बोलूं तो ऐसा मत समझना कि वही हमको दिन रात वही प्रश्न करते हैं. अरे वो तो क्लास छूटते भाग जाता है, बात भी नहीं करता है. मैं बात करना चाहता हूं उससे लेकिन वो भाग जाता है, अब क्या करें. और मैं कितना कंजूस हूं, मैं फोन भी नहीं करता हूं क्योंकि वो इतना बिजी है कि उसको टाइम नहीं है. चलो आगे. 6 द्रव्यो एटले संसारी जीवो अने बीजा 5 द्रव्यो એનું ગમે તેટલું વિશાળ જ્ઞાન થાય. કે કહા છ દ્રવ્યો એટલે સંસારી જીવો કોમાં નહીં ચાહી હા, અને બીજા પાંચ દ્રવ્યો યહાં બરાબર હૈ હા, યાને છ દ્રવ્યો મેં અનંત જીવ આ ગયે ઓર ઉસકે સાથ સાથ પાંચ દ્રવ્ય ભી હૈ, યાની છ દ્રવ્ય કી બાત લી, યહાં સંસારી જીવો કી બાત લી હૈ. એનું ગમે તેટલું વિશાળ જ્ઞાન થાય તો પણ સુખ ન થાય. જે ત્રિકાળી શુદ્ધ ચૈતન્ય ગન્ન ધ્રુવ સ્વભાવ ભગવાન કેવડીએ જોયો અને જાણ્યો તેને લક્ષમાં લેતા ઉપાદેય કરતા, યાને લક્ષમાં લેતા એટલે ઉપાદેય કરતા, પર્યાયમાં જ્ઞાન સમ્યક થાય અને સાથે આનંદ પ્રકટ થાય. ઓર એક બાત ધ્યાન રખના, સમ્યક જ્ઞાન ઓર અતિ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન દોનો હમેશા, અંગ્રેજી મેં બાત કરતા હું તો જરા સબકો અચ્છા લગતા હૈ, દે ગો હેન્ડ ઇન હેન્ડ. યાને પહેલે
અતિ ઇન્દ્રિય સુખ કહેના હૈ આપકો, જ્ઞાન કહા આપને,
અતિ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કહો ઓર અતિ ઇન્દ્રિય સુખ કહો, દોનો સમ્યક જ્ઞાન ઓર સમ્યક સુખ, યા સમ્યક જ્ઞાન ઓર અતિ ઇન્દ્રિય સુખ, જો ભી કહો, જો આત્મા કે અનુભવ કે સાથ મતલબ અનુભવ સે હોને વાલા જ્ઞાન જો સમ્યક હો જાતા હૈ ઉસી સમય ઉસે અતિ ઇન્દ્રિય સુખ કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ. ઓર કિસી કો એસા હો ગયા કે હમકો તો સમ્યક જ્ઞાન હો ગયા લેકિન સુખ ક્યા હોતા હૈ મેરે કો બિલકુલ પતા નહીં લગા, લેકિન હમ તો બહુત સુખી હૈ લેકિન આત્મા કા અનુભવ નહીં હુઆ હૈ, યે દોનો બાતે સહી નહીં હૈ. તો દોનો હમ દૂસરી ભાષા મેં ટેકનિકલ ભાષા મેં કહેના ચાહે તો ઇન દોનો કા કિસકા અતિ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઓર અતિ ઇન્દ્રિય સુખ કા અવિના ભાવ સંબંધ હૈ. યે થોડા સા ક્યા હૈ કે ટેકનિકલ ભાષા બોલને સે પહેલે મેં અપની ઘર કી ભાષા બોલ લેતા હું તાકે આગે કી બાત અપને ખ્યાલ મેં જરૂર બેઠે. ક્યા કહા દેખો, હા યહાં યે સમજા રહે દસ નંબર કે પેજ પે, હા દેખો ક્યા લિખા કે જે ત્રિકાળી શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન ધ્રુવ સ્વભાવ ભગવાન કેવડીએ જોયો અને જાણ્યો તેને લક્ષમાં લેતા એટલે તેને ઉપાદેય કરતા એટલે પર્યાયમાં જ્ઞાન સમ્યક થાય અને સાથે આનંદ પ્રકટ થાય એને શુદ્ધ આત્મા જાણ્યો અને માન્યો કહેવાય. પોતાના ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન દ્રવ્ય સ્વભાવ તે ઉપાદેય છે. દો બાતે બતાઈ હૈ, પહેલે તો કહેતે શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન દ્રવ્ય સ્વભાવ યે કિસકા હૈ, તો પોતાનો ભગવાન આત્મા. તો પોતાનો ભગવાન આત્મા કા અર્થ ક્યા લિયા ઉન્હોને, જો શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન દ્રવ્ય સ્વભાવ સ્વ કા ઉસકો હી ભગવાન આત્મા કહા હૈ. વો કૈસા હૈ, ઉપાદેય હૈ, યાને પરનો શુદ્ધ આત્મા ભલે હો સિદ્ધાદિ ભલે હો પણ તે પરદ્રવ્ય હોવાથી ઉપાદેય નથી. ઉપાદેય નથી એટલે ગ્રહણ કરવા જેવો નથી, એનું અવલંબન લેવા જેવો નથી, એટલે ઉસકો ઉપાદેય નહીં કહા. અને અહીં તો નિશ્ચયથી સ્વાનુભૂતિની પર્યાય, સંવર નિર્જરાની પર્યાય અને મોક્ષની પર્યાય પણ પર્યાય હોવાથી હેય છે. ક્યાં કહા, પહેલે બતાયા થા ના આપકો કે પર્યાય કા આશ્રય મત લેના, પર્યાય ઉપાદેય નહીં હૈ, એસી બાત આઈ થી ના. તો યે પરકી પર્યાય કી તો બાત છોડો, અપને સ્વ કે પર્યાય કો ભી યહાં હેય કહા. હે યાને જિસકા આશ્રય નહીં કરને યોગ્ય હૈ. ક્યું સાહેબ, અરે દૂસરે કી તો ઠીક હૈ, આપની પર્યાય કા હમ આશ્રય લે તો આપકો ક્યા તકલીફ હૈ, ઓર વો ભી કોનસી સંવર નિર્જરા વાલી, હા વો તો શુદ્ધ પર્યાય હૈ, ઉસકો ભી છોડ દે, ઉસકો ભી નહીં દેખે. હા નહીં દેખે ક્યું, ક્યુકે પર્યાય કા ડ્યુરેશન જો હૈ, પર્યાય કા જો પર્યાય કી જો સત્તા હૈ વો તો એક સમય માત્ર હૈ, ઓર એક સમય કી બાત ક્ષયક્ષમ જ્ઞાની કે જ્ઞાન મેં આ જાય એસા તો ક્ષયક્ષમ જ્ઞાન કા ઉઘાડ નહીં હૈ. ખ્યાલ મેં આય, અસંખ્ય સમય જાને કી બાત અભી સમજો હમને અ એસા કહા તો અ કા જ્ઞાન હોને મેં જો ક્ષયક્ષમ જ્ઞાની હૈ ઉનકે અસંખ્યાત સમય લગતે હૈ જબ વો અ કહા એસા સુનતે હમ. ખ્યાલ મેં આયા, તો કહે રહે હૈ યહાં દેખો કિતની બઢિયા બાત બતાઈ હૈ. એ પહેલી લાઈન સે આખીર સે પડતો હું, સેકન્ડ સેકન્ડ પેરેગ્રાફ જો હૈ ના, પરનો શુદ્ધ આત્મા ભલે હો, अब पर की बात ले रहे हैं, सिद्धादि भले हो पान ते परद्रव्य हुआ थी उपादेय नहीं, यहां तो बात ली, वो तो जो अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है उनकी बात ली। अब कहते अने आई तो क्या आई तो एटले समय सार मा तो शू कहवाय छे के निश्चय थी स्वानुभूति नी पर्याय। कौन सी स्वानुभूति नी, यानी सम्यक अनुभव कहो, यानी जिसको हम सम्यक रत्नत्रय वाली पर्याय कहो, वो पर्याय कैसी, और दूसरी कौन सी, संवर और निर्जरा की पर्याय और मोक्ष की पर्याय भी पर्याय होने से हेय है, यानी त्याज्य है, उसके तरफ मत देखो, त्रिकाल ऐसा जो अपना शुद्ध स्वभाव है उस पे नजर केंद्रित करो, ऐसा समझा रहे। आहा आवी अंतरनी बात छे, त्या एने पर भगवान उपादेय केम होय, माटे आमाथी सार काढ़वानो के पोतानो शुद्ध आत्मा एक ज उपादेय छे। क्या कह रहे हैं, एक ज, हाँ इसका अर्थ क्या हुआ मालूम है, क्या नाम है अपने सौभाग चंद जी, यहां तो सिद्ध को भी हटा दिया, अरहंत को भी हटा दिया, शुद्ध जो द्रव्य है उस मतलब शुद्ध द्रव्यों की पर्याय जो वो भी हटाई। अब जहां ऐसे अपने सच्चे देवों को हटाया तो क्या कोई सच्चा गुरु भी तुम्हें सम्यक दर्शन दिलाएगा कि नहीं, आत्मा का अनुभव कराएगा कि नहीं? हाँ, तो आपने वो कच्छ की कौन सी वो देवी है ना, क्या तुम गए थे एक टाइम उधर, क्या नाम है, नहीं नहीं वो जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। हाँ हाँ, कुल देवी कोई थी ना अपनी, वो तो कुछ अपने को सुख भुख देगी कि नहीं? अरे यहाँ तो कह रहे हैं अपनी जो स्वतः की जो सम्यक पर्याय है वह भी आश्रय करने का तो तेरे को काम नहीं होने वाला है। अगर तुझे अपने आत्मा का अनुभव करके शुद्ध मतलब क्या कहते हैं शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है और तुझे सच्चा ज्ञान और सच्चा सुख की प्राप्ति करनी है तो विश्व में कोई गुरु कोई देव कोई देवता कोई अन्य पर पदार्थ तुझे काम में आने वाला नहीं है। और हम तो इतने भोले जीव हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो कोई ना कोई भगवान के सामने जाके माथा टिकाए आए। अरे यहाँ तो क्या बोलते घट्टा क्या बोलते आप लोग, वो ऐसा घिस घिस के होता है ना, है क्या कहती है मम्मी, हाँ खाड़ो थी जाए, खाड़ो नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा देखो बैठ बैठ के अपने पैर को भी होता है ना ऐसा जाड़ा चमड़ा हो जाता है ऐसा घिस घिस के। हाँ अरे ये लोग को घट्टा नहीं समझते ना, ये घटाघट पीते हैं खाने वाले हैं, ऐसा जाड़ा स्किन हो जाता है, ऐसा चाहे जितना माथा रगड़ो तुम, अरे साक्षात जिनेन्द्र भगवान के सामने भी जाके माथा रगड़ो तो वे ही भगवान कहते कि तू ते दूसरे के सामने जाएगा भिखारी मत बन, अरे तू तो स्वयं भगवान स्वरूप है, ख्याल में आया? और हम तो जाते ये गुरु नहीं तो वो गुरु नहीं तो ये गुरु, गुरु गुरु करते हमारी पूरी जिंदगी पूरी हो जाती है। भाई यहाँ तो कह रहे देखो आ माटे आमाती साड़ काढ़वानो के पोतानो शुद्ध आत्मा एक ज उपादेय छे। भाई माफ करना हो, तुम हमारे अपने दोस्त हो इसलिए तुम्हारे नाम से बोलता हूँ। हाँ नहीं मैं खोटा नहीं बोलता हूँ, लेकिन किस जमाने में हम थे ना उस मार्ग पे किस, हाँ बिल्कुल भूत गया अभी जाने दो, अभी भगवान को याद करो। हाँ अभी भगवान को याद करो, भूत को झोल दो, शाबाश बहुत बढ़िया, दिस इज स्पोर्टमैन स्पिरिट। भाई बात तो ऐसी होती है, मैं जरा सौभाग चंद जी मैं अपने लोगों की आड़ लेकर उनको भी समझाना चाहता हूँ और उनके साथ साथ अन्य को भी समझाना चाहता हूँ, तो आप बुरा नहीं मानना, मेरी आदत ही ऐसी है। मेरे मन में किसी के विषय में कोई किलमिश नहीं है, कोई वाइट क्या बोलते खोटी भावना है नहीं। क्या हम तो यही चाहते हैं कि जो जिनेन्द्र भगवान ने बात बताई है वो हर जीव समझे और अपना हित कर ले, बस और क्या है। आगे पर्याय मा राग हुआ छता भगवान आत्मा तो पूर्णानंदनो नाथ छे, नहीं समझ में आया, देखो आपके पास एक बिस्किट है, कौन सा पार्ले का? नहीं डॉक्टर, वो आजकल सोने का बिस्किट आता है ना, अब सोने का बिस्किट लेके जाते जाते कहीं गंदगी में गिर गया, अभी वो अभी तो बंबई में नहीं मिलता लेकिन छाना होता है ना उसमें गिर जावे तो सोना कितना खराब हो जाएगा। हा? तो वहां यही बात यहां बता दे, पर्याय मा राग हो अच्छता, तो ये कहते ये जो त्रिकाली स्वभाव है वो चाहे जो पर्याय में हो उसमें रत्ती भर भी अशुद्धता आई नहीं है। क्या कहा देखो, पर्याय मा राग हो अच्छता भगवान आत्मा तो पूर्णानंदनो नाच्छे, अरे निगोद की पर्याय में भी क्यों न गया हो लेकिन उस स्वभाव में जरा भी अशुद्धता या विकार हुआ है नहीं, स्वभाव में नहीं है, पर्याय में भले हो। तो क्या कहते हैं, पर्याय में राग छे ने, राग छे ते विभाव भाव छे के भाव छे, स्वभाव छे विभाव भाव छे, ए होवा छता भगवान आत्मा तो पूर्णानंद नो नाथ छे, पर्याय तरफ ना वलन ने एटले लक्ष्य ने छोड़ी ने एक समय नी पर्याय थी पन अधिक माने अधिक अने राग नी पर्याय थी पन अधिक, एटले अधिक का अर्थ यहां भिन्न किया, भिन्न उससे बिल्कुल जुदा, एवा आत्म भगवान नो आश्रय करवो, एने उपादे करवो, एने नमस्कार छे। ये किसकी बात चल रही भाई पिनांग भाई, नमस्तमय साराय, उसकी बात चल रही, नमस्तमय सार की कहते कि ऐसा जो भगवान आत्मा है जो राग से भी भिन्न है और एक समय की पर्याय से भी भिन्न है, उससे जुदा है ऐसा जो त्रिकाली भगवान आत्मा है, उसका आश्रय कर वो, यही उसको नमस्कार है। पर एटले भगवान ने नमस्कार करवा, ए तो विकल्प छे राग छे, ये जो अरहंत सिद्ध आचार्य आदि जो पांच परमेष्ठी है इनको नमस्कार करना ये क्या है, कहते हैं राग छे, एकाई धर्म नथी, पंच परमेष्ठी ने नमस्कार करवा, त्यापन पंच परमेष्ठी ये तो परद्रव्य छे, आखरी बात छे। अच्छा अच्छा, पंच परमेष्ठी को नमस्कार नहीं करना है, नहीं करेंगे, अच्छा ही हमारे मन में तो वही था, हम तो दूसरे भगवान को नमस्कार करेंगे, उसका क्या जाता है, वो तो मना नहीं कर रहे आप, यहाँ लिखा है देखो, खाली पंच परमेश्वर ने नमस्कार नहीं करो, अरे नहीं चले, बोलते नहीं चले ये बात, अरे भाई जो अपने अपने कहने में आते हैं, देखो देखो देखो, ये जो पंच परमेश्वर का नमन करने का जो परिणाम है ना भाई, वो तो हमारे तुम्हारे जैसे मिथ्या दृष्टि जीवों के तो अपने बीवी बाल बच्चे धन संपत्ति आदि में राग होता है, हाँ? लेकिन जो मुनि अवस्था में तीन कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक जिनमें वितरागता है, ऐसे जीवों के भी पंच परमेष्ठी प्रति नमस्कार करने का भाव है, वो राग वहां पर भी मौजूद है, इसलिए वहां अत्युत्तम जो राग है उस राग की बात की है कि पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना यह भी शुभ भाव है, धर्म नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमने अभी बताया था ना, वो उनको छोड़ देंगे, हम औरों को नमस्कार करेंगे, तू तो यहां करेगा तो कम से कम पुण्य तो बांधेगा, उधर जाएगा तो मिथ्यात्व का पाप बांधेगा, ख्याल में आया, ये तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि सब बात खोल खोल के बताना पड़ रहा है, ये तो सब अपनी बात, कितनी बात, ये बातें बहुत बार यहां हुई है लेकिन अब विषय के अनुराग तो ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। तो क्या कह रहे देखो, भगवान ने नमस्कार करवा, ये तो विकल्प छे राग छे एकाई धर्म नथी, पंच परमेश्वरी ने नमस्कार करवा त्या पंच परमेश्वरी ये तो परद्रव्य छे, आखरी बात छे भाई, परदव्वाओ दुख गई, याने परद्रव्य ने नमस्कार करवा ए चैतन्यनी गति नहीं, ते शुभ परिणाम छे, चैतन्यनी गति नहीं याने चैतन्य के स्वभाव रूप उसका परिणमन नहीं, ये चैतन्यनी गति नथी, जैसा हमारे घर में हम अपना कुल संपन्न जो घर है और उसमें कोई लड़का कोई गैर मार्ग पे चलता है तो कहते हैं अपने आ कुलनी गति नथी, अपना परंपरा नथी, तो वो गति नथी, तो चैतन्यनी गति नथी, एटले चैतन्य जो भगवान आत्मा है जिसका ज्ञान दर्शन करना यह उसका स्वभाव है, वह उसकी गति है, तो ये राग रूप परिणम ना वह उसकी गति नहीं है, वह उसका स्वभाव नहीं है, वह उसकी चाल चलन नहीं है, એ શુભ પરિણામ છે, વિભાવ છે. અરે આવો વિતરાગનો માર્ગ લોકોએ સાંભળ્યો નથી. અરવિંદભાઈ, હમ જબ શોલાપુર મેં થે, બચ્ચે બચ્ચે છોટે છોટે થે, દિવાલી કે દિન આતે થે તો દિવાલી મેં જાકે વો મહાવીર નિર્વાણ લાડુ ચઢા ગે, ફિર ક્યા કરના. તો પહેલે મેં પહેલે તો એસા સમજતે થે કે વહાં જાકે નિર્વાણ લાડુ ચઢાયા તો બહોત ધર્મ ક્યા. ઓર ઉસકે બાદ ખુશી મેં ક્યા કરતે થે, હમારા ઓઇલ મિલ કા દુકાન થા, ઓઇલ મિલ કા યે થા, ઓઇલ મિલ થી સિંગદાને કી મિલ. તો હમકો પિતાજી લેકે જાતે થે, ક્યુંકે વહાં વો કોઈ ચોપડા પૂજન વગેરે કુછ કુછ હોતા હોગા, કભી આગે પીછે હોતા હોગા, જો ભી હોગા. તો વહાં જાવે તો હમ ક્યા કરે, વો એકદમ એસે એક ગુણી રખતી, દો ગુણી, એસે 150 ગુણી રખતી થી, ઉસમે સે જમ મારને કા, કિસમે બડા બડા ખિસ્સા પહેન લગાને કા, ઓર જૈસા જમ મારેગા તો જીતના ખિસ્સા મેં સિંગદાના આવે વો ખા ડાલને કા. ઓર દેખો હમને આજ ભગવાન કા નમસ્કાર કિયા, દેખો હમકો કિતના અચ્છા ફલ મિલા, ઉસમે ધર્મ સમજતી થી. પાગલ કઈ ઢૂંઢને જાને નહીં પડતે, અપને તરફ દેખો તો પતા લગતા હૈ. યે સારી બાતે હમને સ્વયંને કી હૈ, ઇસલિયે મેં બતાતા હું. આપ કરતે નહીં હો યે મેં જાનતા હું, ઓર કરતે હો તો કિસી કો બતાના મત હો. ક્યા કહે રહે હૈ, તો યે વિતરાગનો માર્ગ લોકોએ સાંભળ્યો નથી, તો હમ ઉસી મેં ધર્મ માનતે થે. અરે યહાં તક કે હમારે ઘર મેં પૂજન હોતી થી, ઓર હમ નહા કે આયે, ઓર સામને વહાં અભિષેક ચલતા હો, ઓર વો બાય ચાન્સ ટાઈમ કોરિલેટેડ હોતા હો, તો હમ કહે અરે આજ તો ધન્ય દિન હૈ, આજ તો હમને કિતના પુણ્ય કમાયા, ખ્યાલ મેં, ઉસમે ધર્મ માનતે થે. એસી બાત હૈ, તો વિતરાગનો માર્ગ લોકોએ સાંભળ્યો નથી, એ ક્યા બાત હૈ. યે તો ભાઈ, અરે જિન જિનેન્દ્ર દેવને યહ માર્ગ બતાયા હૈ, ઉસકો ભી નમસ્કાર કરના યહ ધર્મ નહીં, ઉનીને બતાયા, ઓર દૂસરે ને નહીં. કોઈ હમારા દ્વેષી હો, દ્વેષ કરને વાલા હો, ઓર વો બતાઓ કે ભાઈ દિનેશભાઈ કે વહાં મત જાના. અરે વહી કહે રહા હૈ દિનેશ સ્વયં કે તું મેરે યહાં મત આના, તો કહાં જાઉં સાહેબ, અપને સ્વરૂપ મેં જાના, ખ્યાલ મેં આયા. મેં તો મેરા નામ લેતા હું, યહાં તો મેરી કોઈ હૈસિયત નહીં હૈ. જિનેન્દ્ર ભગવાન યે કહેતે હૈ કે તુઝે અગર તેરા હિત કરના હૈ, તુઝે અપના કલ્યાણ કરના હૈ, તો પર કે તરફ જાયગા તો તુઝે વિકલ્પ હોંગે. પર મેં કોણ આયા, તું છોડ કે સારે દુનિયા કે જીવ હૈ, ઓર અન્ય જો અન્ય પાંચ પદાર્થ મતલબ દ્રવ્ય હૈ, વે સારે તેરે લીએ અન્ય હૈ, વો પર હૈ, વો પર મેં ભી તેરી નજર જાયગી તો તુઝે રાગ દ્વેષ કે પરિણામ હુએ બિના રહેગા નહીં. ઇસલે તો અપને સ્વરૂપ મેં ગુપ્ત હો જા, સ્વરૂપ મેં લીન હો જા, ઓર યહી ધર્મ કી શરૂઆત હોગી. તો કહેતે એસા વિતરાગનો માર્ગ લોકોએ સાંભળ્યો નથી. અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે પહેલા સ્વરૂપને મેળવવું પડે ને, પણ એ પણ નહીં, યાને પહેલે મેં પહેલે આપણે સ્વરૂપ કો ભી પ્રાપ્ત કરના પડેગા ના, એ પણ વિકલ્પ છે. વ્યવહારથી એ વાત આવી ખરે આવે ખરી, પણ એ ખરી વસ્તુ નહીં. પર્યાય સીધો જ શુદ્ધ ચૈતન્યનો આધાર લે, પર્યાય દ્રવ્ય તરફ ઢળે એ જ વસ્તુ છે. યે ક્યા કહેતે હૈ, પહેલે મેં પહેલે કિસીને એસા પ્રશ્ન પૂછા કે ઇસકે લિયે સ્વરૂપ કો પ્રાપ્ત તો કરના પડેગા ના, તો સ્વામીજી કહેતે એ પણ નહીં, એસા ભી નહીં હૈ, ક્યુંકે મુઝે પ્રાપ્ત કરના હૈ. કિસકો, મુઝે મેરે સ્વરૂપ કો પ્રાપ્ત કરના હૈ. યહ વિકલ્પ અવસ્થા હૈ ક્યા, નિર્વિકલ્પ હૈ. હા, નિર્વિકલ્પ વિકલ્પ અવસ્થા હૈ. ક્યા કહા, તો પહેલે ક્યા કહેતે હૈ, જબ હમે અપને સ્વરૂપ કો અનુભવના હૈ, એસા હમને નક્કી કિયા, તો સ્વરૂપ કો સમજને કી કોશિશ કરી, ઓર વહ ભી કોશિશ તો બીચ મેં સ્ટેશન્સ આયેંગે, બીચ મેં રાસ્તે મેં વો બાતે આયેગી, લેકિન વહ તેરા સ્વરૂપ કા આત્મા કા અનુભવ નહીં હૈ. તો જબ વહ આત્મા કા અનુભવ હોગા, વહી સચ્ચી બાત હૈ. તો ક્યા કહે રહે હૈ, એ પણ વિકલ્પ છે. વ્યવહાર થી એ વાત આવે ખરે, યાને હમ યહાં સે ક્યાં ક્યાં નામ હૈ, યહાં સે વીટી જાના ચાહતે લોકલ મેં, તો બીચ મેં સાયન કે બાદ માટુંગા આયેગા, દાદર આયેગા, ઓર ફલા ફલા આતે આતે આખિર મેં વીટી આયેગા. तो बीच में ये बड़ी बातों आवे खरी व्यवहार थी वो बीच में आ गई ऐसा कहेंगे, पर ये खरी वस्तु न थी, यानी बीच में आए हुए जो बातें हैं वह सच्चा आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो आत्मा की प्राप्त की हुई बात नहीं है। पर्याय सीधो ज शुद्ध चैतन्य नो आधार ले, और यह बीच में जो कोई बातें आएगी जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार आदि करने के वगैरह जो कोई बातें आएगी या आत्मा के स्वरूप का बीच में मनन चिंतन वगैरह आएगा, वो आए बिना बीच में एकदम डायरेक्ट, लेकिन उस वहां रुकते न हुए डायरेक्ट वह जो पर्याय है वो शुद्ध चैतन्य का आधार लेती है, तो कहते हैं पर्याय द्रव्य तरफ ढड़े ये जो वस्तु छे ने वही वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा का अनुभव है। आई जे शुद्ध द्रव्य उपादेय कहूं ते पर्याय सहित न मानवू। देखो क्योंकि हमें त्रिकाली ध्रुव द्रव्य का आश्रय लेना है तो पर्याय तो दो हमेशा एक जैसा होगा ना, ध्रुव द्रव्य कैसा होगा, एक सदृश होगा, एक रूप होगा, और पर्याय कैसी हर समय जुदी 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 है, तो यहाँ कहते हैं कि हमें उससे ही त्रिकाली द्रव्य का जो कैसा है कि शुद्ध द्रव्य है, तो शुद्ध द्रव्य में फिर शुद्ध पर्याय हो तो क्या हर जाए, अरे पर्याय वो एक समय मात्र है, उसको लेना ही नहीं बीच में, ये त्रिकाली में नहीं है ना, जो अभी की जो शुद्ध पर्याय है वो पहले अशुद्ध थी ना, वो अभी शुद्ध हुई है तो त्रिकाल साथ में नहीं रहती है, तो इसलिए कहते हैं जे शुद्ध द्रव्य जेने अहिया उपादेय कहूं ते पर्याय सहित न मानवू। शुद्ध जीव जे उपादेय छे तेनी साथे शुद्ध पर्याय ने भेड़वी ने जे उपादेय माने ते अशुद्ध नय कयो, अशुद्ध नय थयो। यहां क्या कहते शुद्ध द्रव्य कहा ना, तो कह रहे प्रवचन सार मा 46 नय मा लीधु छे के माटी ने पर्याय सहित जानवी ए माटी नी उपाधि छे, यानी माटी को पर्याय सहित जानना वो माटी के लिए उपाधि है, यानी एक तरफ से उसके ऊपर स्वरूप नहीं है, कुछ एडिशनल बात उसमें डाली हुई है, व्यवहार छे मेचकपणु छे, मेचकपणु यानी अनेकता मलिनता छे, तो वहां तो माटी का उदाहरण ले, यहां अपना जीव का उदाहरण लो तो वही बात हो जाएगी। अने माटी ने माटी रूप एकली जानवी ते शुद्ध छे निश्चय छे निरुपाधि छे, तेम भगवान आत्मा ने पर्याय ना भेद सहित जानवो ते उपादेय छे अशुद्धता छे मलिनता छे। नहीं नहीं सॉरी सर, उपाधि मैंने अलग पढ़ा था, क्या उपाधि छे अशुद्धता छे मलिनता छे ते व्यवहार नयनो विषय छे, अने आत्मा ने पर्याय थी भिन्न एक शुद्धात्म स्वरूपे जाणवो ए शुद्ध छे निश्चय छे अने निरुपाधि छे। ये बात समझ में आई, कोई भी हाँ नहीं कहता है, कोई भी ना नहीं कहता है, शायद 8:30 होने को आए, अभी 10 है तो घेन चढ़ी जाए ना, हाँ क्यों समझ में आएगी नहीं बात, मम्मी आप क्या कहती है, नहीं समझ में आई, उनसे पूछ रही है तो हाँ ये बात साची है। अरे वाह वाह, मम्मी बोलती है कि आपने ऐसा कुछ जादू चलाया क्या सब लोग आत्मा में लीन हो गए, तो ये जादू के कारण हुआ ना। चलो अच्छी बात है,
देखो यहाँ सामान्य को शुद्ध कहते हैं, त्रिकाल एक रूप सामान्य, और उसमें पर्याय का भेद उसमें करके, इन्हें पर्याय तो है, द्रव्य से पर्याय कभी भी भिन्न हो ही नहीं सकती है, परंतु पर्याय का लक्ष्य करेंगे तो वो भेद हमारे ख्याल में आता है, तो वो भेद रूप से जानना ही अशुद्धता है। तो क्या मोक्ष वाली पर्याय कहो, अभी मोक्ष की है नहीं, हम समय दर्शन की लेते हैं, या मुनिपना की संवर निजरा की पर्याय रूप से आत्मा को देखेंगे तो शुद्ध पर्याय है ना, कोई भी पर्याय हो, पर्याय रूप से जानना यही अशुद्धता है। पर्याय शुद्ध है कि अशुद्ध है इसकी बात ही नहीं है, पर्याय रूप से आप देख रहे हो वो अशुद्धता, और पर्याय को गौण करना है, पर्याय को नहीं देखना है, और अकेले जो सामान्य एक रूप ऐसा जो त्रिकाल रहने वाला ऐसे जो द्रव्य स्वभाव है उसको देखना, वही शुद्धता है, ये द्रव्य की शुद्धता। अब जो मिथ्यात्वी जीव है उसके पास ऐसी द्रव्य की शुद्धता है कि नहीं, ऐसा मेरा प्रश्न है। हाँ बोलो हेतन। मिथ्यात्वी जीव को ऐसी शुद्धता की दृष्टि करनी है तो उसके पास ऐसी शुद्धता है कि नहीं है? है ना, सबके पास है। तो मिथ्यात्वी भी जीव अपने में उठने वाले राग द्वेष हो या मिथ्यात्व हो, कोई भी पर्याय हो, उसको गौण ही करना है। देखो सम्य दृष्टि हो उसको भी पर्याय को गौण करना है, और मिथ्या दृष्टि को भी पर्याय को गौण करना है, और अकेले सामान्य को देखना है। तो दोनों को एक साथ दिखेगा क्या, अलग अलग दिखेगा? मिथ्यात्वी को जो सामान्य दिखेगा वो थोड़ा मैला होगा ना, नहीं? तो एक रूप है ना, हमने तो सभी पर्यायों को गौण किया है। विद्यमान जो कुछ पर्याय है उसको गौण ही करना है, उसको नजरअंदाज ही करना है, तो वो कौन है उसकी बात ही नहीं करनी, बस त्रिकाली वही शुद्धता है। और ऐसे शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेना है, यानी उसको जानते रहना है। अवलंबन लेना वगैरह बड़े बड़े शब्द आते तो कोई घबराने की बात नहीं, ज्ञान से उसको जानते रहना और उसको स्व रूप से ग्रहण करना, स्वरूप से जानना, यही बात है।
हाँ देखिए, अभी ये नीचे से थर्ड लाइन फिर से पढ़ रहा हूँ। तेम भगवान आत्मा ने पर्यायना भेद सहित जानवो ते उपाधि छे, अशुद्धता छे, मलिनता छे, ते व्यवहार नहीं नो विषय छे, अने आत्मा ने पर्याय थी भिन्न एक शुद्धात्म स्वरूपे जानवो ए शुद्ध छे, निश्चय छे, निरुपाधि छे। अभी जब यहाँ पर आचार्य त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से तुम हो और यही तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा जब द्रव्यार्थिक नय से कहो या निश्चय से कहो, हमें स्वरूप को समझा रहे हैं, तब कोई जीव ऐसा बीच में बोलता है तो क्या हम मनुष्य नहीं है? तो मनुष्य है तो तू पर्याय अपेक्षा से मनुष्य है ऐसा कहने में आ रहा है, वो बिल्कुल है नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको यहाँ गौण किया है, उसके तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, हम तो अभी यहाँ त्रिकाली स्वभाव की बात समझ रहे हैं, ख्याल में है ना? लेकिन कोई ऐसा ही अड़के बैठे है कि नहीं नहीं, तो पहले तो ये नक्की करो कि हम मनुष्य है कि नहीं। अरे नक्की क्या करने का है, मनुष्य तू है ही, लेकिन अब उसकी बात नहीं, यह तो तेरे त्रिकाली शुद्ध स्वभाव की बात कर रहे हैं। पर्याय को जहां गौण करना है, पर्याय को यहां उपाधि कहा ना, ख्याल में है ना? तो ये तो हमने द्रव्य पर्याय की बात की, वैसे जो गुण पर्याय यानी अर्थ पर्याय जो है उसको भी वहां नहीं लेने का है क्या? तो कहते हैं एक शुद्धात्म स्वरूपे जानवो ए शुद्ध छे, निश्चय छे, निरुपाधि छे। यानी जहां जिस वक्त जिस बात का विवेचन हो रहा है, जिस बात से समझा रहे हैं, उस बात को समझना वक्ता का क्या कहते हैं कर्तव्य है, वक्ता उसी तरफ से समझे, अपने मन के अनुसार उसमें कोई तब्दीली नहीं करे। जहां जिस अपेक्षा से बात हो, अभी वो श्रीमत जी बोल के गए ना, क्या बोले मालूम है आपको? वासंती बहन को मैं जानती है, बोलो बोलो। जा जे जे योग्य छे तहां समझू दे, यानी जहां जिस प्रकार से जिस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है वैसा हमें समझना चाहिए। संसारी जीव शुद्ध जीवनु यानी पर अरहंत आदिनु लक्ष्य करे छे माटे सम्यक ज्ञान छे एम नथी, शुद्ध पोते त्रिकाल ध्रुव छे तेने पर्यायमां स्वीकारे त्यारे साचू ज्ञान अने साचू सुख थाय, त्यारे तेने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अने शांति थाय। पोतानो भगवान शुद्ध चैतन्य वस्तु एनो पर्यायमां आदर करियो त्यारे पर्यायमां जे अनुभूति थई ते पर्याय सिद्ध करियूं के સ્વાનુભૂતિની પર્યાયમાં તે પ્રકાશે છે એટલે જણાય છે, જાણવામાં આવે છે. દ્રવ્ય દ્રવ્યથી પ્રકાશતું નથી, દ્રવ્ય ગુણથી પ્રકાશતું નથી, કારણ કે બંને એટલે દ્રવ્ય અને ગુણ બંને ધ્રુવ છે. તે સ્વાનુભૂતિની પર્યાય દ્વારા પ્રકાશે છે. પ્રકાશે છે કા અર્થ જાણે છે લેના હો, પ્રકાશે છે અને વો એસા ટ્યુબલાઇટ લગાતે ક્યાં તુમ્હારા ટોર્ચ લગાતે એસા નહીં. યહાં ક્યા કહેતે કે દ્રવ્ય જો હૈ વો દ્રવ્ય કે માધ્યમ સે હમ નહીં જાનતે, દ્રવ્ય જો હૈ વો ગુણ કે માધ્યમ સે નહીં જાનતે, ઓર દ્રવ્ય જો હૈ વો પર્યાય કે માધ્યમ સે હી જાનને મે આતા હૈ. યે જો આપકા પર્સ હૈ વો કૈસા રંગ કા હૈ, કાલા, તો કાલા હૈ યહ દ્રવ્ય હૈ, ગુણ હૈ યા પર્યાય હૈ? પર્યાય કોન સે દ્રવ્ય કે કોન સે ગુણ કી પર્યાય હૈ બતાઓ. વર્ણ ગુણ કે, બહુ અચ્છા. પુદગલ દ્રવ્ય કે, દેખો ઉસકો ના પુદગલ દિખા ના ઉસકો ગુણ દિખા, કોણ સા વર્ણ નામ કા ગુણ, વર્ણ નામ કા ગુણ દિખતા હૈ ક્યા? અરે વર્ણ ગુણ કી કાલી પર્યાય દિખ રહી હૈ, યાની પર્યાય કે માધ્યમ સે અભી વો તો હમ પુદગલ કો પ્રકાશિત કર રહે, પુદગલ કો જાન રહે. તો પુદગલ કો જાનના હો તો કોઈ ભી લો આપ, ખ્યાલ મેં ના, હમને લડ્ડુ ખાયા તો કેસા લગા, હા બહોત મીઠા થા, તો મીઠા એ ક્યા હૈ? યે પુદગલ દ્રવ્ય કે રસગુણ કી પર્યાય હૈ, તો યે પર્યાય કે માધ્યમ સે હમ દ્રવ્ય કો પહેચાનતે. વૈસે યહાં કહા, દેખો દેખો યે ક્યા કહેતે, દેખો થોડો સેકન્ડ લાઈન, 11 પેજ પર સેકન્ડ લાઈન. દ્રવ્ય દ્રવ્યથી પ્રકાશતું નથી એટલે દ્રવ્ય દ્રવ્યથી જણાતું નથી, દ્રવ્ય ગુણથી જણાતું નથી, કારણ કે બંને એટલે દ્રવ્ય અને ગુણ ધ્રુવ છે એટલે કાયમ ત્રિકાળી ટકે છે, એ બદલતું નથી. તે સ્વાનુભૂતિની પર્યાય દ્વારા પ્રકાશે છે એટલે દ્રવ્ય પોતાના પર્યાય દ્વારે, કેવી પર્યાય? સ્વના અનુભૂતિ રૂપી જે પર્યાય છે એની દ્વારા જણાય છે. આવો માર્ગ છે ભાઈ, ભગવાનનું આમ કહેવું છે, ત્રિલોકનાથ પરમાત્માના આ વચનો છે, એના આ કહેન છે. કહેન કા અર્થ ક્યા લેના અરવિંદભાઈ? યાને વચન છે. હા તો આ મોટા ઘરના કહેન આવે એવો ક્યા હૈ? હા એમાં ઇસી મેં ગડબડી હો ગઈ, વો અલગ બાત હૈ. હા ક્યા કહે રહે? જેમ કોઈ કરોડપતિ અને મોટા ઘરની કન્યાના કહેન આવે, આ ગયા, દેખો દેખો દેખો, હા તો તરત પોતે સ્વીકારી લે છે. હા ક્યા? તેમ આ તો ત્રિલોકનાથના કહેન છે, તેને ઝટ સ્વીકારી લે ના ન પાડ. અભી ઓર આપકા સસ્પેન્સ રખતા હું, ઇસકે આગે કી બાત કલ લેંગે, ક્યોંકિ અભી ત્રિલોકીનાથ કા કહેન યાની જૈસા હમ કહેતે ના માંગણી આતી હૈ, મતલબ માંગતે હૈ કે આપકે ઘર મેં હમારી લડકી દેની હૈ, એસા હમ કહેતે ના, તો વૈસા યે ત્રિલોકીનાથ હમકો આકે ઓફર કર રહે, ઓર હમ ઉસકો ઠર ઠર મેં જરા મુંહ ધોકે આતા હું, એસી વાત હો ગઈ. ચલો યે કલ સે પૂરા હી પેરેગ્રાફ પઢેંગે. હા કલ તારીખ કોન સા? 24. જાવાણી કે જ્ઞાન તૈ સુજે લો કાલો, સોવાણી મસ્ત કર્ણમો સદા દેત હોય.